नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी संयुक्त रूप से बाराबंकी में रैली को संबोधित करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने तमिलनाडु में नए लिक्विड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की। अमन सहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पहलवान बने। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के आगामी चरणों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी सबसे पहले भाजपा के बैरकपुर उम्मीदवार अर्जुन सिंह के समर्थन में उत्तर 24 परगना के जगत दल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे हावड़ा और हुगली जिले में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी आज से बिहार के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। वे आज शाम पटना में रोड शो करेंगे। श्री मोदी का पटना में ये पहला रोड शो होगा। ये आयोजन पटना साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के समर्थन में होगा। कांग्रेस ने इस क्षेत्र से लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री की बिहार यात्रा को देखते हुए पटना, छपरा, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 4थे चरण में सोमवार को होने वाले मतदान के लिए मतदान कर्मी निर्धारित क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं। इस बीच विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अगले चरण के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज रायबरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। श्री अमित शाह प्रतापगढ़ जिले में भी रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीतापुर, बहराइच और अमेठी निर्वाचन क्षेत्रों में आज चुनाव प्रचार करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बाराबंकी में INDII गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में संयुक्त रैली करेंगे। अखिलेश यादव बाद में लखनऊ के मोहनलालगंज निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे फैजाबाद और अम्बेडकर नगर जिलों में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायबरेली में प्रचार अभियान में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को उत्तर प्रदेश की 14 सीटों के लिए मतदान होगा। इनमें कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी की महत्वपूर्ण सीट भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है, जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को हराया था। राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इसका गढ़ माने जाने वाली और संजय गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को संसद पहुंचाने वाली अमेठी संसदीय सीट से इस बार कांग्रेस ने गांधी परिवार के सदस्य के बजाय अपने करीबी KL शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। सोनिया गांधी के सांसद बनने के बाद से अब तक अमेठी और रायबरेली सीटों पर जमीनी काम करने का जिम्मा KL शर्मा उठाते रहे हैं। यही वजह है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन KL शर्मा के लिए कांग्रेस के पुराने गढ़ को वापस जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनका मुकाबला भाजपा की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से होगा। स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को इस सीट पर 55,120 मतों से हराया था। उस चुनाव में स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले थे और राहुल गांधी के खाते में 4,13,394 वोट गए थे। इस बार बसपा की ओर से नन्हे सिंह भी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। अमेठी संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं। इनमें तिलोई, सालोन, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी शामिल हैं। इस संसदीय क्षेत्र के 14,28,316 मतदाता 20 मई को 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने पंजाब में पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 2 दिन का दौरा किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर बल की तैनाती की जानकारी ली और भविष्य में सीमा सुरक्षा में आने वाली चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
अपनी यात्रा को एक यादगार और ऐतिहासिक अवसर बनाते हुए सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने अमृतसर स्थित अटारी संयुक्त सीमा चौकी के पास शाही किला परिसर में बल का सबसे ऊंचा ध्वज फहराया, जिसकी ऊंचाई 350 फीट है और ये 60 फीट लंबा व 40 फीट चौड़ा है। यहाँ पहले से ही स्थापित राष्ट्रीय तिरंगे के साथ अब ये ध्वज भी कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकेगा। नितिन अग्रवाल ने अटारी में प्रहरी भोज के दौरान जवानों से बातचीत की और कड़ी चुनौतियों व अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद पूरी तत्परता से सीमा की सुरक्षा करने पर जवानों की प्रतिबद्धता को सराहा। शिशु शर्मा, शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
उधर तेलंगाना में लोकसभा के सभी 17 निर्वाचन क्षेत्रों और राज्य की सिकंदराबाद कैंटोनमेंट विधानसभा सीट पर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक रवि गुप्ता ने बताया कि सुरक्षा अभ्यास में प्रवर्तन एजेंसियों की रणनीतिक तैनाती शामिल है। इनमें 73,000 से अधिक सिविल पुलिसकर्मी, तेलंगाना के विशेष पुलिस बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 164 कंपनियां और तमिलनाडु एसएपी की 3 कंपनियां शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार कल समाप्त हो गया। इस चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर सोमवार को वोट डाले जाने हैं। इस चरण में आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8 और महाराष्ट्र की 11 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा ओडिशा की 4, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13 और पश्चिम बंगाल की 8 तथा जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए भी वोट डाले जाएंगे। इस बीच निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में हुए मतदान के अंतिम आंकड़े जारी कर दिए हैं। तीसरे चरण में कुल 65.68% मतदान हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नए लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण शुक्रवार को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी के इसरो के प्रोपल्शन परिसर में किया गया। नवनिर्मित PS-4 इंजन में खंडों की संख्या कम की गई है। इस प्रणाली से ईंधन में कच्चे माल की खपत और उत्पादन में लगने वाले समय में कमी आएगी। इसका उपयोग PSLV प्रक्षेपण यान और प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली में भी किया जाएगा। इसरो PSLV में PS-4 इंजन को नियमित करने की योजना बना रहा है।
नए विन्यास से तैयार किया गया इंजन को PSLV लॉन्च व्हीकल के चौथे चरण और पहले चरण के रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम में इस्तेमाल किया जाएगा। आगे से इस नए इंजन का इस्तेमाल PSLV में आरंभ होगा। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का मतलब PSLV इंजन के विन्यास को 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किया जाएगा। 3D प्रिंटेड PS-4 इंजन का हॉट टेस्टिंग में निजी कंपनी विप्रो 3D का योगदान है। 3D प्रिंटेड इंजन से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को काफी मदद मिलेगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वार्ताओं और व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद में भागीदारी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक मुद्दों पर बातचीत अब नए आयाम छू रही है। श्री जयशंकर नई दिल्ली में यूरोपीय संघ राष्ट्रीय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पिछले वर्ष स्थापित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए भारत के समर्पण को भी रेखांकित किया। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत इसकी प्रगति में योगदान के लिए उत्सुक है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये अवसर दक्षिण एशिया में सहयोग को और सुदृढ़ करने का अवसर है। श्री सरवर भारत की 5 दिन की यात्रा पर हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोल दिए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया है।
जय बद्री जय तेरा धाम, गाँव भजन में सुबह शाम, आज मिला है तेरी कृपा से मुझको सबका प्यार, मुझको सबका प्यार। जय जय बद्री धाम,
जय जय बद्री धाम।
बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही सभी चारों धाम अब श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इससे पहले केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 10 मई को खोले गए थे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और कर्नाटक में कहीं कहीं भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इसी अवधि में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दक्षिण और उत्तर पश्चिम क्षेत्र सहित देश के अधिकांश भागों में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जैनमणि ने बताया कि देश के कुछ हिस्सों में बारिश की भी संभावना है।
तो थंडरस्टॉर्म होता है वो रहेगा, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, गंगटीक, वेस्ट बंगाल है, केरला है और उसी के साथ साथ भी जो मध्य महाराष्ट्र इलाका है और मध्य प्रदेश एंड विदर्भ वहाँ भी रह सकता है। तो मेनली जो लाइटनिंग होता है तो उसका ज्यादा ऑरेंज कलर हम लोग जारी किया है इलाका में। लेकिन अच्छा खबर यही है कि कहीं भी हीट वेव हमारा वार्निंग नहीं है। तापमान जो है 40 का नीचे है और वोटिंग के लिए कल जो इलेक्शन है उसके लिए कोई हीट वेव वार्निंग नहीं।
इस बीच दिल्ली में आज आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। अमन सहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। एशियाई चैंपियन सहरावत ने कल इस्तांबुल में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया है। आज चेन्नई सुपर किंग्स दोपहर बाद 3:30 बजे राजस्थान रॉयल्स से और जबकि दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे बेंगलुरु में दिल्ली कैपिटल्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद चंद्रिका। अखबारों ने मतदान के चौथे चरण का प्रचार समाप्त होने और प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के आपसी वार पलटवार और आरोपों को पहले पन्ने पर विस्तार से दिया है। हिंदुस्तान ने लिखा है जोर आजमाइश के बीच चौथे चरण का शोर थमा। दैनिक भास्कर की खबर है गर्मी में कमी आई, घुमड़ने लगे बारिश के बादल, बेहतर मॉनसून के मजबूत संकेत, दोनों महासागर में बनने लगा माहौल। अमर उजाला ने पंजाब के प्रसिद्ध कवि और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सुरजीत पात्र के निधन की खबर को शीर्षक दिया है मैं रात का आखिरी जजीरा घुल रहा विलाप करता हूं। पत्र ने श्री पात्र को मिले सम्मानों के जिक्र के साथ वो कविताएं भी दी हैं जो चर्चा का केंद्र रही थी। मदर्स डे के अवसर पर आज प्रकाशित कई अखबारों ने विशेष आलेख भी प्रकाशित किए हैं।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी संयुक्त रूप से बाराबंकी में रैली को संबोधित करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने तमिलनाडु में नए लिक्विड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अमन सहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पहलवान बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।